हरे कृष्णा। गीता महात्म्य शीत है क्या? शीत। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gopula Nanda, Radha Gopula Nanda Radhe. Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Gauranitai, Jai Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada.
Jaya Om Vishnupad Parama Paramhansa Parivrajakacharya Ashtotar Sat His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jaya Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jaya Shri Shri Radha Gokula Ananda Ki Jaya Shri Shri Gaur Nitai Ki Jaya Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jaya Nitai Kaur Gaur Premanande समवेत भक्त वृंद की जाए समवेत भक्त वृंद की जाए समवेत भक्त वृंद की जाए श्री श्री गुरु गौरांग की जाए ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्राप्त देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा आज मोक्षदा एकादशी है इसी तिथि पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर इसलिए ये दिवस गीता जयंती के रूप में मनाई जाती है अर्थात भगवद गीता का प्राकट्य दिवस भगवद भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है, इसलिए उनमें और उनके वाणी में कोई अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से चिन्मय हैं, आध्यात्मिक हैं, उसी प्रकार उनकी वाणी, उनकी कथा ये भी चिन्मय और आध्यात्मिक है। इसलिए भगवद गीता श्री कृष्ण से अभिन्न होने के कारण हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि भगवद गीता की कभी शुरुआत हुई थी या भगवद गीता का जन्म हुआ था। जिस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ये तथा कथित जन्म है। इसलिए हम आविर्भाव या प्राकट्य ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे हम जान सके हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण का जन्म कभी नहीं हो सकता, वो केवल प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण की बात तो दूर है, हम सब का भी जन्म और मरण नहीं होता है क्योंकि हम सब जीवात्मा हैं, और आत्मा का तो न तो जन्म है और न मरण। ये भगवद गीता का प्राथमिक ज्ञान है। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवद गीता समझना चाहता है, सबसे पहली बात जो उसे बताई जाती है वो यही है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सब आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, और आत्मा शाश्वत है, तो हमारी भी मृत्यु होती नहीं है, केवल शरीर का विनाश होता है बस। तो फिर भगवान श्री कृष्ण के जन्म और मरण की बात कहाँ आती है? तो भगवद गीता जयंती या भगवद गीता के आविर्भाव की बात करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि जैसे श्री कृष्ण शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार भगवद गीता का उपदेश भी, भगवान से संबंधित ज्ञान भी सदैव विद्यमान रहता है। ऐसा कभी समय नहीं था जबकि भगवद गीता नहीं थी, और नहीं ऐसा समय कभी आएगा भविष्य में जबकि भगवद गीता नहीं रहेगी। तो फिर हम भगवद गीता का आविर्भाव दिवस क्यों मना रहे हैं? क्योंकि इस रूप में अभी आधुनिक काल के इतिहास में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का संदेश दिया था। इसलिए वैसे भगवद गीता के चौथे अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवेत, कि हे अर्जुन, मैंने सबसे पहले ये भगवद गीता का ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। इमं विवस्वते प्रो, तो विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया, मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। और इस तरह से ये ज्ञान परंपरा में चलते आया, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप, कि हे अर्जुन, इसी प्रकार से गुरु से शिष्य, फिर गुरु से शिष्य, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान चलता आया, परंतु कहीं किसी समय ये ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए ये ज्ञान मैं पुनः स्थापित कर रहा हूँ, तुम्हें पात्र बना रहा हूँ इस ज्ञान को सुनने के लिए, क्योंकि तुम योग्य व्यक्ति हो। अर्जुन की योग्यता क्या थी? स इवाय मयातेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम येतद् उत्तमम्। ये ज्ञान तो बीच में लुप्त हो गया है अर्जुन, परंतु तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है, ये ज्ञान देने के लिए। तो अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारा अर्थात हम जैसे संशय आत्माओं का। इस कलयुग में सभी के मन में संशय भरे हैं बहुत सारे, तो संशयों का निवारण करना आवश्यक है। इसलिए अर्जुन हमारे भलाई के लिए, हमारी जानकारी के लिए पूछते हैं। वो कहते हैं अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। अपरम भवतो जन्म मतलब आपका जन्म बाद में हुआ। परम जन्म विवस्वतः, विवस्वान्य सूर्य देव का जन्म श्रेष्ठ है क्योंकि उनका जन्म आपसे पहले हुआ। अब श्री कृष्ण और अर्जुन तो हम उम्र के थे, दोनों मित्र थे, तो अर्जुन के मन में प्रश्न है, हमारी आयु तो केवल 100-125 साल की है, ये आयु दोनों की थी भगवद गीता के समय, और सूर्य देव तो कब से हैं, उनका जन्म तो कितने लाखों साल पहले हुआ, फिर आप ये कैसे कहते हैं। कथम एतम विजानीयम तुम आदो प्रोक्तवान इति, मैं कैसे ये जान सकता हूं कि आपने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया जो कि आपसे बहुत पहले जन्म ले चुके हैं, आपसे बहुत वरिष्ठ हैं। फिर भगवान कृष्ण बताते हैं बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वित्थ परंतप, कि हे अर्जुन बहुत जन्म हम दोनों ने लिए हैं, हमारे अनेक जन्म बीत गए, मुझे सारे जन्म याद हैं परंतु तुम्हें याद नहीं है, क्योंकि अर्जुन जीव हैं, भगवान श्री कृष्ण जीव नहीं है, वो भगवान है, उनकी स्मृति में घटन कभी नहीं होता, परंतु हम सब जीव हैं, हमारी स्मृति का घटन होता है, इसलिए अर्जुन भूल गए परंतु श्री कृष्ण नहीं भूले कि मैं अनेकों बार यहाँ अवतार ले चुका हूँ। भगवद गीता में तो घोषणा करते ही है भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम् मतलब मैं अवतीर्ण होता हूँ। तो भगवान अनेकों बार अवतीर्ण हो चुके हैं और होंगे भी, और भगवान को ये सारे अवतार बिल्कुल शत प्रतिशत याद है। अब आश्चर्य की बात यह है कि भगवान क्योंकि अकेले नहीं आते, उनके भक्तों के संग ही आते हैं, तो अर्जुन भी उनके साथ में अनेक बार आ चुके हैं परंतु अर्जुन को याद नहीं है, भगवान ने उनको भुला दिया है। इस बात को श्री कृष्ण याद रखते हैं, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन के उत्तर को में अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं कि तुम नहीं याद कर सकते अर्जुन, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, मैं पहले भी प्रकट हो चुका हूं, समय समय पर हर युग में मेरे विभिन्न अवतारों में मैं प्रकट होता हूं, इसलिए मैंने पहले भी बता चुका हूं ये ज्ञान विवस्वान को, सूर्य देव को, किसी अन्य रूप में, जिस रूप में मुझे तुम देख रहे हो उस रूप में भले ना हो, लेकिन मेरे अनेक अवतार ऐसे हुए हैं और अनेकों बार मैंने भगवद गीता का उपदेश दिया है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान या सूर्य देव को ये उपदेश दिया तो लाखों साल पहले की बात है ये, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहली बार था कि गीता का उपदेश भगवान ने कहा, नहीं, इससे पहले भी अनेकों बार कह चुके हैं। दूसरे शब्दों में क्योंकि भगवान शाश्वत हैं, उनके बारे में जो ज्ञान है और उनका उपदेश भी शाश्वत है, तो वो शाश्वत रूप से ये ज्ञान समय समय पर देते रहते हैं। जैसे समझिए एक विश्वविद्यालय में किसी भी एक कक्षा में अध्यापक आके पाठ पढ़ाते रहते हैं, कितने सारे विद्यार्थी आते हैं और उस पाठ को पढ़ते हैं, फिर एक दो साल बाद वो निकल जाते हैं उस विश्वविद्यालय से। और ऐसे भी होता है कि वो अध्यापक भी थोड़े वर्षों के बाद पढ़ाई पढ़ा के वो भी चले जाता है, दूसरा कोई आता है, लेकिन पाठ रहता है वैसे ही। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण विभिन्न रूपों में आते हैं और वो उनके उपदेश देते रहते हैं, उनके रूप बदलते हैं, उनके अवतार बदलते हैं, परंतु उनका जो पाठ है वो रहता है। इसलिए भगवद गीता का संदेश ये शाश्वत है। तो भगवद गीता का प्राकट्य इस रूप में केवल जो 700 श्लोक में है, ये 5000 वर्ष पहले हुआ और वही ज्ञान हमको इस समय अभी मिल रहा है। कितना हमारा सौभाग्य है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा भाग्य कम है अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन के सामने तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान प्रकट हुए, लेकिन हमारे सामने तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं हुए, तो हम उतने भाग्यशाली नहीं हैं जितना कि अर्जुन थे। परंतु प्रभुपाद जी समझाते हैं कि नहीं, हमारा भी उतना ही सौभाग्य है जितना कि अर्जुन का था। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा और भगवान में अंतर न होने के कारण जब ये भगवद गीता ग्रंथ हमारे सामने रखते हैं और इसका पाठ हम करते हैं ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक, तो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण अपने कथा रूप में, अपने वाणी रूप में हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। तो जो लाभ अर्जुन को प्राप्त हुआ श्री कृष्ण के निजी सानिध्य में गीता सुनने का, वही लाभ हमें भी प्राप्त होगा यदि हम भगवद गीता का प्रतिदिन पाठ करें और अपने जीवन में इन उपदेशों को उतारने का प्रयास करें। तो अर्जुन और हम में इस दृष्टि से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। यदि केवल सानिध्य, शारीरिक सानिध्य ही एकमात्र महत्वपूर्ण बात है, तो दुर्योधन को भी तो सानिध्य मिला था, शाल्व को, शकुनी को, दुशासन को भी तो मिला था, शिशुपाल को मिला था, उन्होंने भी अनेक उपदेश सुने भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हमारे सामने भी श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो जाएं और हमें कुछ कथा कहना शुरू करें, यदि हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो फिर क्या लाभ है। परंतु भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने न भी उपस्थित हों, परंतु हमारे हृदय में श्रद्धा है और भक्तों के संग में आकर भगवद गीता का हम पाठ करते हैं, हम समझते हैं और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों को हम समझते हैं, तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम भी उसी गति को प्राप्त कर पाएंगे जो कि अर्जुन को प्राप्त हुई। कितनी सुंदर बात है, कहां अर्जुन और कहां हम साधारण व्यक्ति बेलगाम में रहने वाले। लेकिन फिर भी ये सत्य है कि हम भी उसी गति को प्राप्त कर सकते हैं जो कि अर्जुन ने प्राप्त की, केवल भगवद गीता का पाठ करके, इसको समझ के, इसको अपने जीवन में उतार के। लेकिन इसके लिए श्रद्धा चाहिए। ऐसे श्रद्धा की भावना से यदि हम भगवद गीता को सुनेंगे तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवद गीता का नाम तो सभी ने सुना है, परंतु भगवद गीता है क्या, इसके बारे में अनेक धारणाएं हैं। विशेष करके भारत में तो इतने सारे संपादन हैं भगवद गीता के कि प्रभुपाद जी कहा करते थे कि इन भगवद गीताओं में और भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता में बहुत अंतर है। अनेक ऐसे टीकाकार हैं भगवद गीता के जिन्होंने अपने मनमाने ढंग से कोई ऐसे निचोड़ निकाला है भगवद गीता का जो वास्तव में सत्य नहीं है। तो यदि हमें भगवद गीता वास्तव में समझना है तो इसे यथारूप समझना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसे कहा करते थे, जिस प्रकार से यदि एक बोतल में शहद है मधु और उसका पान हम करना चाहते हैं, तो यदि केवल उस बोतल के बाहर से हम चाटेंगे बोतल को तो शहद का स्वाद नहीं मिलेगा, हमें ढक्कन खोल के अंदर से शहद निकालना होगा, तब जाकर हम जब इसे चखेंगे तो सही मधु का स्वाद हमें मिलेगा। तो भगवद गीता को ठीक तरह से समझने के लिए भी हमें यथारूप जैसे है वैसे समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य के माध्यम से उनकी कृपा से समझने का प्रयास करना चाहिए, नम्रता से इस ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए और भक्ति भाव से। बार बार श्रील प्रभुपाद जी दोहराते हैं कि भगवद गीता का सार है भक्ति। भारत में वैसे अनेक गलत धारणाएं हैं, किसी साधारण व्यक्ति को आप पूछिए कि भगवद गीता का सार क्या है तो वो क्या कहेगा, कर्म करते रहो यही सार है। भारत में आप ऐसे बहुत सुनेंगे, मैं भी भगवद गीता का पालन करता हूं, मैं भी कर्म करता हूं, लेकिन कर्म करने में कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग कर्म कर रहे हैं। डाकू है वो भी कर्म कर रहा है, चोर है वो भी कर्म कर रहा है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो भी कर्म कर रहा है, और जो अच्छे लोग हैं वो भी कर्म कर रहे हैं। तो केवल कर्म करना ये कर्मयोग नहीं होता, और नहीं केवल कर्मयोग भगवद गीता का सार है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम समझाया है कि कैसे हमें कर्म करने चाहिए, क्यों करने चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवद गीता के 18 अध्याय हैं, उनके 3 विभाजन हम कर सकते हैं। 6-6 अध्याय, पहले 6 अध्याय, बीच के 6 अध्याय और अंत के 6 अध्याय। और भगवद गीता के 3 मुख्य विषय हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। पहले 6 अध्यायों में कर्मयोग का वर्णन है, अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान योग का वर्णन है, और बीच वाले 6 अध्यायों में भक्ति योग का वर्णन है। तो शुरुआत में, क्योंकि प्रभुपाद जी या श्री कृष्ण, क्षमा कीजिए, अभी तक पूरे तरह से विस्तार में भक्ति का वर्णन, शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं कर चुके हैं, इसलिए पहले कर्म योग या कर्म मिश्र भक्ति का वर्णन करते हैं, उन लोगों के लिए जो अभी तक शुद्ध भक्ति के स्तर में नहीं है। इसलिए वो कहते हैं, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, यत करोषि, जो भी तुम करते हो, यज्जुहोषि, जो भी तुम यज्ञ आदि करते हो, यत तपस्यसि, जो भी तुम तप आदि करते हो, यत अश्नासि, जो भी तुम खाते हो, जो भी दान देते हो, वो सब मेरे लिए करो, मुझे अर्पण करके करो। तो ये कर्म योग है या वो भक्ति है जिसमें कर्म का मिश्रण है। व्यक्ति अपने ढंग से कर्म करता है, फिर इन कर्मों के फलों को भगवान के चरणों में अर्पण करता है, परंतु भक्ति का पथ अलग होता है। भक्ति के पथ में भक्त के कार्यों के फल अर्पण नहीं किए जाते भगवान को, बल्कि वो कर्म के कर्म ही अर्पण किए जाते हैं। आप समझ रहे हैं अंतर? एक है कर्मों का फल अर्पण करना, हमें जैसे चाहिए हम कर्म करेंगे शास्त्रों के सीमा के भीतर, और जो फल आता है हम भगवान को अर्पण करेंगे, कृष्ण अर्पणम अस्तु। परंतु भक्ति में हम जो भी कुछ करते हैं वो कार्य ही भगवान को समर्पित है, कार्यों के फल को समर्पित करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे हम जप करते हैं तो वो जप ही भक्ति है, एक जप के फल को भगवान को अर्पण करने की जरूरत नहीं है। हम कीर्तन करते हैं, भगवत गीता पाठ करते हैं, यही भक्ति है, श्रवण कीर्तन आदि। तो ऐसे आवश्यक नहीं है कि हम कोई कर्म करें फिर उसका फल हम भगवान को दें। तो पहले 6 अध्यायों में यद्यपि भक्ति योग का भी उल्लेख है, अवश्य भक्ति का तो सब जगह सारे भगवत गीता में उल्लेख है, परंतु ध्यान भगवान ने दिया है कर्मयोग के ऊपर, और फिर अंत में ध्यान दिया है भगवान ने ज्ञान योग के ऊपर। भक्ति योग जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उसे उन्होंने छुपा के रखा है बीच में, और पहले 6 अध्याय और अंत के 6 अध्याय ये भक्ति योग की रक्षा कर रहे हैं, ताकि भक्ति योग में पहुंचने के लिए आपको पीछे से आगे से दोनों से यदि प्रवेश करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों रक्षा कर रहे हैं भगवद गीता के बीच वाले हिस्से का जो 6 अध्याय है। श्रील प्रभुपाद ये भी समझाते हैं कि वास्तव में 17 अध्यायों में भगवद गीता समाप्त हो जाती है और 18वें अध्याय में केवल सार कृष्ण भगवान देते हैं सारे गीता का, जैसे दूसरे अध्याय में भी सारे भगवद गीता का सार पाया जाता है, उसी प्रकार से 18वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण सारे भगवद गीता का सार देते हैं। वैसे हम कह चुके हैं कि बीच वाले 6 अध्यायों में भक्ति योग का उल्लेख है, वर्णन है, तो इस क्षेत्र को या इन 6 अध्यायों को सबसे गुही ज्ञान माना जाता है, और इस बीच वाले 6 अध्याय के भाग में जो 9वां अध्याय है वो परम गुह्य ज्ञान कहलाता है, सबसे गुह्य ज्ञान, इदम गुह्य तमम। गुह्य तमम मतलब सबसे गुह्य, और इस अंतिम इस 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ए वैशसि युक्त्वैवम आत्मानं मत परायणः। वो कहते हैं अर्जुन हमेशा मेरा स्मरण करो, दूसरी बात मेरा भक्त बनो, तीसरी बात मेरी उपासना करो, चौथी बात मुझे नमस्कार करो। ये 4 चीजें यदि तुम करोगे ये भक्ति है, और निश्चित ही ऐसे भाव में तुम यदि मग्न रहोगे तो तुम मेरे पास लौट के चले आओगे। तो भगवद गीता का सार बीच वाले 6 अध्यायों में है, बीच वाले 6 अध्यायों का सार 9वें अध्याय में है, 9वें अध्याय का सार 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में है, जो है मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम आत्मानं मत परायणः। तो ये सार है, लेकिन अधिकतर भारत में लोग ऐसे सोचते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते ये सार है, नहीं, कम से कम मां फलेषु कदाचन हुआ हो तो उतना तो कुछ भी तो हुआ, कम से कम कर्मयोग हुआ होता, परंतु केवल कर्मण्येवाधिकारस्ते कहने से बात नहीं चलेगी। जब हम मां फलेषु कदाचन कहते हैं कि फल का अधिकार मुझे नहीं है, कर्म करने का अधिकार है, परंतु कर्मों के फल का भोग करने का अधिकार मुझे नहीं है, तब कर्मयोग की शुरुआत होती है। लेकिन कर्मयोग से भी हमें आगे बढ़ना है। वैसे लोग सोचते हैं कि कर्मयोग क्रियाशील लोगों के लिए है, ज्ञान योग बुद्धिमान लोगों के लिए है, और भक्ति योग भावुक लोगों के लिए है, ऐसा कहते हैं ना लोग, आपने भी सुना होगा, परंतु ऐसे नहीं है। सबसे क्रियाशील और सबसे बुद्धिमान लोगों के लिए है भक्ति योग, क्योंकि भक्ति ही ज्ञान की परिपूर्णता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में आते हैं। अब 18वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण सारे भगवद गीता का सार देते हैं तो वो निष्कर्ष इस तरह से करते हैं, गुह्य ज्ञान, गुह्य तर ज्ञान और गुह्य तम ज्ञान, इन तीनों का वर्णन करते हैं। ये तरतम्य ज्ञान आप जानते हैं, अच्छा, सबसे अच्छा, यानी अच्छा और भी अच्छा और सबसे अच्छा तुलनात्मक दृष्टि से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं गुड बेटर बेस्ट। तो गुह्य, गुह्यतर मतलब और ज्यादा गुह्य, और गुह्यतम मतलब सबसे गुह्य, परम गुह्य। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि परम सत्य की पहचान तीन तरह से की जाती है। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। सर्वप्रथम भगवान को निराकार समझते हैं लोग, ये प्रथम अवस्था है परम सत्य को जानने के लिए। ये गलत नहीं है परंतु अपूर्ण है, क्योंकि इस निराकार अवस्था के परे भी परम सत्य का अस्तित्व है, वो ऐसे लोग नहीं जानते हैं। तो विशेष करके जो लोग ज्ञान योग के पथ में चलते हैं वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, और इसे आगे चल के है हर एक प्राणी के हृदय में स्थित भगवान का परमात्मा रूप चतुर्भुज, जिनके ऊपर ध्यान करते हैं योगी जन। ध्यानावसित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। तो ये परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है योगियों को, अष्टांग योगियों को, और फिर जो भक्त होते हैं वो भगवान को समझते हैं, श्री कृष्ण को। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को समझता है वो परमात्मा और निराकार ब्रह्म इन दोनों को भी समझ लेता है, परंतु वो भली भांति जान लेता है कि श्री कृष्ण से ही परमात्मा आते हैं, और श्री कृष्ण के शरीर की दिव्य कांति है यही निराकार ब्रह्म है। तो निराकार ब्रह्म का ज्ञान जो है इसे गुह्य ज्ञान कहते हैं, परमात्मा का जो ज्ञान है इसे गुह्यतर ज्ञान कहते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ज्ञान है ये गुह्यतम ज्ञान है। तो ज्ञान की गुह्यता की भी श्रेणियां होती हैं। तो गुह्यतम ज्ञान ये है मनमना भव मत भक्तो। तो 18वें अध्याय में अंत में श्री कृष्ण सार देना चाहते हैं सारे भगवद गीता का। तो गुह्य ज्ञान का वर्णन करते करते फिर बताते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समह सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कि जो व्यक्ति ऐसे ब्रह्म भूत स्तर पर स्थित हो जाता है ज्ञान योग के द्वारा, अपने आप को आत्मा समझ लेता है, फिर आगे चल के वो भक्ति करने में सक्षम हो जाता है, फिर पराभक्ति उसकी शुरू हो सकती है, फिर आगे चल के वो गुह्यतर ज्ञान का वर्णन करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, वही परमेश्वर हरेक प्राणी के हृदय में स्थित हैं और सबके भ्रमण का नियंत्रण करते हैं, तो इनके शरण में जाओ तुम, और ऐसे शरण में जाने से निश्चित ही तुम उन्हें प्राप्त हो जाओगे। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण गुह्यतर ज्ञान देते हैं। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। ऐसे तुम शाश्वत शांति की प्राप्ति करोगे यदि तुम परमात्मा के शरण में जाओगे तो। लेकिन बात समाप्त नहीं होती यहां पर। फिर इस गुह्यतर ज्ञान के बाद फिर भगवान कहते हैं, सर्व गुह्यतमं भूय श्रृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़ इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मैं तुम्हें गुह्य ज्ञान बता चुका हूं, गुह्यतर ज्ञान भी बता चुका हूं, अब क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो, मेरे शुद्ध भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी सबसे गुह्य बात बताने वाला हूं, गुह्यतम बात बताने वाला हूं। वो कौन सी बात है? फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण वही बात कहते हैं जो कि उन्होंने 9वें अध्याय के अंत में कहा था, लेकिन इस बार जो अंतिम दो पाद हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, लेकिन बात वही है। मन्मना भव मत भक्तो मद्याजि माम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि मे। पहले दो लाइन वैसे ही हैं, मन्मना भव मत भक्तो मद्याजि माम नमस्कुरु, परंतु अंत में वो बताते हैं सत्यम ते, मैं सच कह रहा हूं अर्जुन, संशय नहीं करना, मैं झूठ बोलने के लिए नहीं आया, मैं सच कह रहा हूं। माम ए वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने, ये मेरा मेरी प्रतिज्ञा है, तुम अच्छी तरह से जान लो, प्रिय असी में, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम यदि ऐसे करोगे तो तुम निश्चित मेरे पास चले आओगे। क्या करना चाहिए? ये चार चीजें, मन मना, हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, भव मत भक्त, उनका भक्त बनना चाहिए, मत याजी, उनकी उपासना करनी चाहिए, माम नमस्कुरु, उन्हें नमस्कार या प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसे करने से हम भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये गुह्यतम ज्ञान है। हमारे एक वैष्णव आचार्य हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया है, एक उपमा दी है। उन्होंने कहा है कि ये भगवद गीता एक ऐसे अनमोल खजाने के पात्र के समान है, बक्से के समान है, जो नीचा भाग है इसका, ये पहले 6 अध्याय है, ये सोने का बना हुआ है, नकली सोना नहीं, असली सोना, और इसका जो ढक्कन है वो भी बहुत अच्छे मूल्यवान पदार्थों से बना हुआ है, लेकिन उसमें अनमोल रत्न आदि हैं, इनसे सुशोभित है ये ढक्कन, और इसके ये ऊपर ये अंत वाले 6 अध्याय हैं, 13 से 18। तो नीचे वाला जो हिस्सा है पात्र का वो पहले 6 अध्याय है, ऊपर वाला हिस्सा है वो अंत के 6 अध्याय हैं, और इसके भीतर जो एक अनमोल हीरा है वो है बीच वाले 6 अध्याय। तो अब इस बक्से को या इस खजाने को, इस तिजोरी को ताला लगा हुआ है, तो कैसे खोलना चाहिए, चाबी कहाँ से मिलेगी? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं ये 18वें अध्याय के जो 2 श्लोक हैं, 65वां और 67वां, ये 2 श्लोक ये चाबी है, 64 अक्षरों की चाबी, हर एक श्लोक में 32 अक्षर, हर पाद में 8 अक्षर, 4 पाद होते हैं, 32 अक्षर एक श्लोक में। तो पहले 32 अक्षर या पहला श्लोक है ये मन मना भव मत भक्तो वाला श्लोक, और इसके बाद वाला श्लोक कौन सा है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम समस्त धर्मों को त्याग दो, केवल एकमात्र मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, तुम डरो नहीं। तो ये दो श्लोक है, मन मना भव मत भक्तो और सर्वधर्मान परित्यज्य। इन दो श्लोकों को हम जानेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, वो चाबी मिल जाएगी जिससे हम ये सारे खजाने को प्राप्त कर सकते हैं, और वो खजाना है कृष्ण प्रेम का। और इन दो श्लोकों में से मन मना भव मत भक्तो और सर्वधर्मान परित्यज्य, इन दो श्लोकों में से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है?
मन मना।
कितने भक्त कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, हाथ ऊपर कीजिए। ठीक, कितने भक्त कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, हाथ ऊपर कीजिए। अनेक भक्तों ने हाथ ऊपर उठाया नहीं। कितने भक्त कहते हैं हमें पता नहीं, हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है मन मना भव मत भक्तो। क्यों? क्योंकि शरण लेने के बाद हमें भक्ति करनी है भगवान की। शरण किस लिए लेना है? ताकि जाके हम भक्ति करें। दूसरी बात, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे शरण में आओ, फिर आगे क्या कहते हैं? मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो हो सकता है कोई व्यक्ति सोचे कि मैं भगवान के शरण जाऊंगा लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरे पाप नष्ट होने चाहिए, तो कुछ लेन देन की बात आई ना, थोड़ी बात आई लेन देन की बात। मैं कुछ चाहता हूं भगवान से, मेरे पाप कर्मों को वो नष्ट कर दें ताकि मुझे पापों का कष्ट नहीं मिले। लेकिन मनमना भव मत भक्तों में क्या है, हम केवल भगवान की प्रेममयी सेवा करना चाहते हैं, केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, और कोई हेतु नहीं हमारा। ये है भक्ति, शुद्ध भक्ति। इस तरह की भक्ति हमें चाहिए, ये हमारे जीवन की सफलता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के बीच में जब संवाद आता है, और चैतन्य चरितामृत में साध्य के बारे में, जीवन के लक्ष्य के बारे में चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं रामानंद राय से, रामानंद राय अनेक चीजें कहते हैं, साथ साथ सर्वधर्मन परित्यज्य श्लोक भी कहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एहो बाह्य आगे कहो आर, ये बाह्य है और कुछ आगे कहो। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कहना चाहते हैं कि हमें शरण नहीं जाना चाहिए भगवान का, परंतु वो कहना चाहते हैं कि केवल शरण जाना, अपने कर्मों को वर्णाश्रम आदि को त्यागना और फिर संन्यास लेना, ठीक है, फिर आगे क्या क्या करना चाहिए? ये सब त्याग के, कर्मों को त्याग के क्या करना चाहिए? फिर आगे चलते चलते जब रामानंद राय कहते हैं ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमन्ति एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभीर ये प्रायसो जित जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम। ब्रह्मा जी का श्लोक है श्रीमद् भागवत का, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से मानसिक चिकित्सा के पथ को त्याग देता है कि मेरे ख्याल में परम सत्य ऐसे होंगे, मेरा मत है कि भगवान ऐसे हैं, ये मेरा मत, और इस मानसिक चिंतन का पथ को जो त्याग करता है, ज्ञाने प्रयासम उदपस्य, और साथ साथ में जीवंत सन मुखरिताम भवदीय वार्ताम, जो भक्तों के संग में रह के भगवान श्री कृष्ण के सुंदर गाथाओं को या कथाओं को सुनता है, अपने स्थान में रहते हुए स्थाने स्थिता मतलब ऐसे संन्यास आदि लेने की आवश्यकता नहीं है, गृहस्थ हैं तो गृहस्थ रहना है, जो जिस अवस्था में हम हैं उस अवस्था में रह के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनुवान मनोभीर, लेकिन श्रवण करना है भगवान के बारे में और अपने तन से, अपने शरीर से, वान अपने वाणी से और अपने मन से भगवान की सेवा करनी है। तो जो व्यक्ति ऐसे करता है वो भगवान के धाम को प्राप्त करने का अधिकारी व्यक्ति बन जाता है। तो इस श्लोक में क्योंकि केवल भगवान श्री कृष्ण के सुंदर लीलाओं को और उपदेशों को सुनने की बात ब्रह्मा जी ने की है, तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत स्वीकार किया, एहो हाय, क्योंकि सही भक्ति यहां से शुरू होती है, केवल भगवान का गुणगान करना और सुनना, भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा, ये भक्ति कहलाती है। फिर महाप्रभु प्रसन्न हुए, हाँ तुमने जो कहा सही कहा, लेकिन और भी बातें बताओ कि ये भक्ति कैसे करनी चाहिए। फिर वो संवाद आगे चलता है। इसलिए हम जब भक्ति करना चाहते हैं, भगवद गीता के सार को जानना चाहते हैं, इसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो संदेश यही है कि मुख्यतः हमें भक्तों के संग में आकर भगवान कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जैसे आज आप यहाँ आए, 3 घंटे लगातार बैठ के आपने भगवद गीता के 700 से अधिक श्लोकों का पाठ किया एक साथ बैठ के, फिर कीर्तन भी हुआ, भगवान के नामों का उच्चारण हुआ, और अब भगवान के उपदेशों की कथा भी हो रही है, भगवान का दर्शन भी हुआ और अंत में प्रसाद भी होगा। तो यह संपूर्ण सेवा है, यह है भक्ति। तो यदि हृदय से श्रद्धा पूर्वक तीव्रता से नियमित रूप से हम ऐसे ही करते रहेंगे और इन्हीं कार्यकलापों को अपने घर में भी करते रहेंगे, और जो चेतना हमारी बनती है उसको दिन भर बनाए रखने का प्रयास करते हैं, तो शीघ्र ही हम भक्ति में प्रगति करेंगे और जीवन का अंत जब आएगा, जब भी वो आएगा भगवान की इच्छा से, तो हम निडर होंगे और जाने के लिए तैयार होंगे भगवान के धाम। तो ये है भगवद गीता, भगवद गीता का उद्देश्य ये है। लेकिन पाठ करना है तो कैसे करना है? प्रेम से करना है। प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन दे रहे थे तो वो बता रहे थे कि कैसे पाठ करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। वो कह रहे थे कि एक तोता जो होता है वो भी आप उसे कुछ सिखाइए तो वो भी उसी चीज को दोहराएगा। आप तोते को सिखाइए गुड मॉर्निंग कहने, तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वो कहता रहेगा, वैसे का वैसे दोहराता रहेगा। उसी तरह से आप उसे हरे कृष्ण महामंत्र सिखाइए, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलता जाएगा। भगवद गीता के श्लोक पढ़ाइए, वो भी पाठ करता रहेगा। फिर प्रभुपाद जी नकल की उस तोते की, कि यदि कोई व्यक्ति आके तुरंत, वो जब हरे कृष्ण महामंत्र कह रहा है तुरंत उसका गला पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा? का 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 फिर से करना शुरू करेगा, क्योंकि उसका हृदय उसमें नहीं है। वो ऐसे, इसलिए हम कहते हैं ना कि तोते की तरह पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसे कहावत है ना, हृदय से पाठ करना चाहिए। और जो हृदय से पाठ करता है अवश्य वो सफलता उसको मिल जाती है। ये कहानी तो आप कई बार सुन चुके होंगे, दक्षिण भारत के श्रीरंगम में ब्राह्मण की, जब चैतन्य महाप्रभु वहां गए उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण भगवद गीता का पाठ कर रहे थे, और अन्य जो ब्राह्मण थे वो कभी कभी हंस देते थे क्योंकि ये ब्राह्मण सही तरह से उच्चारण नहीं कर सकते थे, इतने विद्वान नहीं थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए और कहने लगे कि आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया कि हमें रोज भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, तो मैं पाठ कर रहा हूं। मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता, नहीं मुझे ठीक से उच्चारण करने आता है, परंतु मेरे गुरु का आदेश मैं पालन कर रहा हूं। उन्होंने मुझे बताया तो मैं पूरे प्रेम से पूरे श्रद्धा से मैं कर रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अच्छी बात है कि ये गुरु के आदेश का पालन करके आप भगवद गीता का पाठ कर रहे हो, लेकिन आपके आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि जब मैं पाठ करता हूं तो मुझे स्मरण आता है कि वो भगवान श्री कृष्ण जो परम सत्य है, जिनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जिनसे श्रेष्ठ और कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं है, जो षड ऐश्वर्यों से संपन्न है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि अपने भक्त के वो दास बनके उनके सारथी बन जाते हैं, और जैसे ऋण भूमि पर अर्जुन उनको आदेश देते हैं वैसे वैसे वो पालन करते हैं। तो भगवान के इस गुण को, इस महानता को, भगवान के ऐसे दिव्य गुणों के बारे में स्मरण करके मेरा दिल भर आता है और इसलिए मेरे आंखों में आंसू आते हैं, प्रेम के आंसू आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आलिंगन कर लिया इस ब्राह्मण से, ब्राह्मण को, और कहने लगे वास्तव में सबसे बड़े विद्वान तुम हो, क्योंकि तुम गीता के सार को जान गए हो। भगवत गीता का सार है कि हम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त होने हम बन जाने चाहिए, और ये ब्राह्मण तो बन गए थे, यद्यपि वो इतने विद्वान नहीं थे, और हो सकता है जो अन्य विद्वान थे, अन्य ब्राह्मण थे, विद्वान होकर भी वो ब्राह्मण ये वो शुद्ध भक्त नहीं थे, हो सकता है। तो महत्वपूर्ण बात विद्वत्ता की नहीं है, महत्वपूर्ण बात तपस्या आदि की नहीं है, महत्वपूर्ण बात है हमारी भावना। यदि हम नम्र रहेंगे, हम भक्तों के संग में रह के श्रद्धा पूर्वक सेवा और भक्ति करेंगे, अपने अहंकार को, अपने स्वार्थ को आदि त्यागेंगे, फिर अवश्य भगवद गीता हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाएगा, जैसे कि उस ब्राह्मण के हृदय में प्रकट हुआ। तो ये भगवद गीता का प्राकट्य दिवस है, तो हमें भगवद गीता से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गीते कृपया हमारे हृदय में प्रकट हो जाइए, जिस प्रकार से आप उस ब्राह्मण के हृदय में प्रकट हुए थे। और इस तरह से ऐसी भावना हम सही रखेंगे तो हमारा जप हरे कृष्ण महामंत्र का, हमारा स्वाध्याय, हमारी सेवा, इन सब की परिपूर्णता अवश्य होगी। देखिए हर चीज के पीछे महत्वपूर्ण चीज होता है भाव। कार्य महत्वपूर्ण अवश्य है, परंतु इससे महत्वपूर्ण है हमारी भावना। हम सही भावना से हमारी भक्ति के अंगों को संपन्न करेंगे तो शीघ्र ही प्रगति करके सफलता प्राप्त कर लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता प्राकट्य दिवस की जय। गीता जयंती महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम कितना समय है? ठीक है, यदि किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न है? हाँ, माइक इधर दीजिए।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
भगवान ने एक जगह वर्णाश्रम की पद्धति स्थापित की, और जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो जैसे आपने बताया कि रामानंद राय के साथ जब संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि भक्ति भक्तों के संग में भगवान का कीर्तन गायन या स्मरण करके होती है। तो जब वर्णाश्रम धर्म में देखते हैं तो उसमें बताया गया कि संन्यास और वानप्रस्थ, तो संन्यास और वानप्रस्थ में तो भक्तों का संग नहीं मिल सकता
तो क्यों नहीं मिल सकता
तो वानप्रस्थ होते तो फिर
सन्यासी है हम आप बैठे हैं ना आप सबके बीच में आप सबका संग हमें मिल रहा है ना संग अवश्य है कलयुग में विशेष करके सभी को संग लेना चाहिए कलयुग में एकांत में भक्ति नहीं की जा सकती है इस युग में संभव नहीं है इसलिए एकांत स्थान में रहना वर्जित है पहले के जमाने में सन्यासी लोग केवल भ्रमण किया करते थे आजकल आश्रमों में रहना भ्रमण करना है भले परंतु भक्तों के संग में इधर से उधर इधर भक्तों का संग उधर भक्तों का संग फिर जाके भक्त बनाएं प्रचार करें फिर भक्तों के साथ रहें
लेकिन ऐसा ही बताना कि जिस स्थिति में है उस स्थिति में ही रह के भी भक्ति की जा सकती तो ये जो है ब्रह्मचर्य से ग्रस्त फिर सन्यासी तो स्थिति बदल गई
हाँ यदि ये भक्ति के लिए लाभदायक हो तो ऐसे किया जा सकता है जब स्थाने स्थिता कहा गया है इसका मतलब है कि आवश्यकता अपनी भक्ति के लिए मूल रूप से नहीं है परंतु यदि लाभदायक हो तो अवश्य हमारे स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं तो इसलिए गुरु के निर्देशन गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है लेकिन आमतौर से जैसे हमारी बाह्य परिस्थिति है उसमें रह के भी हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं ये मूल बात है ठीक है और जहां आवश्यक है वहां परिवर्तन भी हो सकता है ठीक है तो अभी कीर्तन करेंगे थोड़ा
Hare Krishna.